पञ्चाकल्पतरुदश्चिता नमो महापतन्नाय कृष्णप्रेमाय कृष्णाय कृष्णचैतन्ये हे कृष्ण दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त सप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विशभानुसुतेजी प्रणमामि हा देवी काकुभर गदगदयाब्ज वाचा जाते निपत्त भुवि दण्डवतो जगतार्थे अस्य प्रसादमुपश्य तव गणेश अंग श्यामलिम छटाभिरभितो मंदे कृतेन्दे वर जत्रञ्जागुदरोच संग विदध तंग पट्टंदरस्य श्रिया आसनं हृदि रसद्दामाभिरामो ध्यायन्ता भक्त्याभिज्ञापराधलक्ष्य क्षिप्तास्तरङ्गमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे श्रीचरणाय हरभक्ताय वैराग्यजुगभक्तिरसंप्रयत्नैयपायन् कृपां बुधेज परदुःखदुःखी सनातन श्री चैतन्य मनोभीष्ट येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति द्वैपायनो विरहकातरया पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयम् कुमार की तरफ उनको साधन करना है ना, साधन जरूर करना है। भगवान और गुरु अंतर्यामी होते हैं कि नहीं, हम साधन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भगवान भी देखते हैं और गुरु भी देखते हैं। जल्दी हम साधन नहीं कहेंगे और कहेंगे ये हम साधन कर रहे हैं, ठकेबाजी मार रहे हैं, तो भगवान क्या करेंगे? भगवान क्या करेंगे बतलाओ? वो भी ठक देंगे, ये जथा नाम पर थक जाएंगे। जो ठकेबाजी मारेंगे तो भगवान भी उनके साथ में डबल फांसीबाजी मारेंगे।
भगवान साक्षात होने पर ही ना फांसीबाजी हो गई, जब पंचायत ही नहीं है तो
साधक अवस्था में भी ना? सबसे पहले जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं, उचित जो दक्षिणा नहीं देता उसका उसकी दीक्षा व्यक्त हो जाती है। एक कोई श्लोक ऐसा है, पढ़ाए तुम लोग कि नहीं? दक्षिणा जो नहीं देगा दीक्षा के समय में उसकी दीक्षा खत्म हो जाएगी। जो लौकिक पुरुष है लौकिक रूप में दक्षिणा, पारमार्थिक व्यक्ति पारमार्थिक कुछ दक्षिणा देगा, लेकिन तो देना पड़ेगा सब। और दक्षिणा में यदि कोई फांसी दिया पहली स्थिति में ही फीस नहीं जमा किया और नाम लिखाने के लिए गया, अच्छा मैं दे रहा हूँ और नाम लिख लीजिए आप, मैं अभी ला रहा हूँ, और नहीं दिया तो समझ रहे हैं कुछ खूब सब लोग समझो मैं क्या कह रहा हूँ। इसे दक्षिणा जरूर देना पड़ेगा, नहीं तो दीक्षा ही नहीं, और देने के बाद ही भी यदि हम उनको फांसी देंगे तो फिर इसलिए ये करो ऐसा नहीं, साधन ठीक ठीक करो, और मठ मंदिर का सब कुछ ही साधन है, इसलिए सोच विचार करके कोई चुपचाप मत बैठे।
ভগবান
দিদি দক্ষিণা দু মন ভগবান গ্রহণ করে আগ্রহ থাকে, কেউ সব সময় সেবা কাজে লাগে, চাহে হরিনাম হোক আর চাহে মঠের অন্য কোনো সেবা, এর তো কিছু নাই বিশেষ, সাধন ভজনের জন্য আমাদের সব সময় আছে, কিন্তু তাকেও যদি ফাঁকিবাজি মারি আমরা এই জন্য কেউ কেউ কিছু বলতে না হয় যে এই করো ওই করো, হ্যাঁ তো আমরা সব ব্যবস্থা ম্যানেজমেন্ট মধ্যে লেগে গেলাম, তাহলে তার এই জন্য সব দেখে শুনে সব সেবা কাজ করব, সাধন ভজন করব, আর দেখলা করতে নেই প্রদর্শন করলে কি জরুরত, সাধন ভজন জিতনা যে ছিপা করকে করেগা উতনা হি উসকে লিয়ে আচ্ছা, রোজ রোজ পাঠ করলে কি ভি জরুরত নেই।
সুমিত্রা ডাক্তার
সুমিত্রা এসে তোমার ডাক্তার এসেছে ডাক্তার তো যাই একটু দেখি আস তোম বৈকুণ্ঠ প্রাপ্তি কে যে সাধন ও লোক বদলায় জিসমে চক্রভুজ যে ভগবান কে পার্শ্বদ থে বদলা রে মন্যামহে কীর্তনমে এব সত্তম লোলাত্মকৈক স্বহৃদি স্ফুরত স্মৃতে বাচি স্বযুক্তে মনসি সুতৌ তথা দিব্যত পুরাণ অপ উপকুর্বত আত্মবত। জিতনি প্রকার কে সাধন হ্যায় বৈকুণ্ঠ কো প্রাপ্ত করনে কে লিয়ে, বৈকুণ্ঠ সে ইহা সমগ্র বৈকুণ্ঠ কো সমঝ লো, আপ টু বৃন্দা সবকো সমঝ তো সবকে লিয়ে এক জেনারল কহ রহে হ্যায় সাধারণ রূপ মে বদলা রহে হ্যায় কি বহুত সে সাধন হ্যায় বৈকুণ্ঠ কে জিসমে নৌধা ভক্তি পঞ্চধা ভক্তি চৌষট প্রকার কি ভক্তি ইত্যাদি হ্যায় जैसे वैकुंठ में जाता है, इसमें भी तीन प्रधान श्रवण कीर्तन और स्मरण, इसमें भी कीर्तन और स्मरण दो प्रधान, स्मरण माने क्या, रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं जीवा के से अपने प्रिय भगवान के नामों का कीर्तन और मन के द्वारा स्मरण उन लीलाओं का, तो इसमें कुछ कुछ लोगों का विचार है और की तो बात छोड़ दो, और मैं तो ध्यान ऊंचा बतलाते हैं हमारे संप्रदाय में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो राधांगा भक्ति के लिए स्पेशली ध्यान को सर्वश्रेष्ठ बतलाते अर्थात स्मरण को अष्टकाली लीला स्मरण इत्यादि भगवान की लीला कथाओं का स्मरण इसको सबसे श्रेष्ठ बतलाते, किंतु जीव सनातन गोस्वामी जी यहां गोप कुमार और चतुर्भुज पार्षदों के माध्यम से ये बतला रहे हैं मन न महे, किंतु हम मैं कौन का है चतुर्भुज नारायण के पास उत्ता है और सनातन गोस्वामी यहां हम लोगों से कहा संकीर्तनम एव सप्तमम, संकीर्तन ही सप्तमम तमम सप्तम माने सबसे श्रेष्ठ संकीर्तन। क्यों? चित्त तो लोलात्मक है, मन चंचल है, स्थिर नहीं रहता है। यदि कोई मन को स्थिर करके लीलाओं का स्मरण करे तो सब तो ठीक है, किंतु ये किसी भी स्थिति में ये मन शांत नहीं होता, चंचल रहता है। उसको केवल एक ही उपाय है। क्या उपाय है? यदि भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का जोर जोर से एवं व्रत स्वप्रिय नाम कृत्या जातां रागो वृतचित्त उच्चय वृतचित्त उच्चय उच्चय रूप में भगवान का नाम रूप गुण लीलाओं का यदि कीर्तन किया जाए तो वह कीर्तन एक जिह्वा से निकलकर मस्तिष्क में पहुंच करके मन को और सारी इंद्रियों के क्रियाओं को स्तब्ध कर देता है। पृथक रूप में चंचल मन को किसी भी स्थिति में उसको दमन नहीं किया जा सकता, एकाग्र नहीं किया जा सकता है। उस मन को एकाग्र करने के लिए भी जरूरत है तो कीर्तन। इसलिए विशेष करके कलयुग में महाप्रभु जी ने बतलाया, अब कलयुग का युग धर्म है नाम संकीर्तन, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही वो केवल कलौ नास्ते व ध्यानम नास्ते व यज्ञ प्रथम साध्याय संयम नास्ते, केवल हरिनाम संकीर्तन ही सबसे श्रेष्ठ। तो ये लोलात्मक मन को भी चंचल मन को भी स्थिर कौन करेगा? इसलिए संकीर्तन के अधीन यदि स्मरण हो तो वो ठीक है। इसलिए बाकी संयुक्त जीवन में ये नाम संकीर्तन उत्पन्न होकर के बाकी समस्त सारी इंद्रियों को और मन को भी अपने वशीभूत कर लेता है। बिना सवार का घोड़ा लगाम नहीं है, घोड़ा और सवार नहीं, तो घोड़ा क्या करेगा? जहां इच्छा तहां दौड़ेगा। ऐसे यदि मन रूपी घोड़े पर यदि कीर्तन रूपी सवार को चढ़ा दिया जाए और उसके हाथ में बागडोर पेर दिया जाए तो घोड़ा विपत्त में इधर उधर कर जहां चाहेगा वहां रुकेगा। ठीक ऐसे, इसलिए उन लोगों का कहना वो चीज ठीक नहीं, ये बतला रहे हैं। ये कृष्ण भक्ति के लिए भी ब्रज जाने के लिए भी यही, इसलिए उनके गुरु ने बतलाया श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण हासी यशोदा तनय प्रसिद श्री वल्लभी की। अच्छे, कोई एक आदमी नमात्मक कीर्तन न करके अष्टादश मंत्र का जप करे तो वैकुंठ जा सकता है कि नहीं, या गोलोक ब्रज में जा सकता है कि नहीं? जाएगा कि नहीं? तो क्या होगा? लोगों ने कहा है कि गोपियां जितने लोग महर्षि हुए थे ना, गोपाल मंत्र का जप करके ही गोपी का स्वरूप था।
नाम
तो लिखा नहीं करता, ये 60,000 महर्षि जो थे रामलीला में देखा जाता है वो लोग गोपी मंत्र का ये गोपाल मंत्र ही का ही साधन करते। तो फिर ये गोपाल मंत्र कम है या काम गायत्री कम है, ये वैकुंठ में मां नहीं पहुंचा देगा?
वो धारण करने फिर कीर्तन किया था
ना, वो तो गोप कुमार किया था, किंतु इन उदाहरण से प्रायसा मालूम होता है कि ये भी कम नहीं है भाई। गोपाल मंत्र और काम गायत्री सिद्ध मंत्र हैं और इनके साधन करने से आदमी ब्रज को प्राप्त हो जाता है।
तो
कैसे इसका सामंजस्य किया जाएगा? इतना सहज नहीं जितना तुम समझ रहे हो, बहुत बड़ा भारी कठिन चीज है। ये भी देखना है कि वो सिद्धांत गड़बड़ न हो जाए, नाम संकीर्तन ही वहां पर पहुंचाएगा। और इधर भी लिखा है जिसे इस मंत्र का साधन करके बहुत से लोग वो लोग ब्रज में गए, कैसे इसका मीमांसा होगा? खूब सहज है। सिद्धि किया कहां, साधन किया कहां? इस भौम जगत में, ब्रज में हो चाहे जहां भी किया, ब्रज में ही रह करके किया या दंडकारण्य में, उन लोगों ने किया गोपाल मंत्र से। इससे जिस मंत्र की सिद्धि हुई, संबंध ज्ञान उसका स्थाई भाव के रूप में परिणत हो गया। जिसका जैसा जैसा भाव है उसकी सिद्धि हुई, बस इस लोक तक ही वो सीमित रह गया, जाने के योग्य हो गया मैया। अब वो गोपी गर्भ से ब्रज में जहां पर के कृष्ण की प्रकट लीला चलता है वहां पर वो जोग माया के प्रभाव से, और ब्रज में गोपियों के गर्भ से उत्पन्न होकर के चाहे वो सखा हो, चाहे माता पिता हो, और चाहे गोपी हो, जन्म लेना पड़ेगा और वहां का अभिमान होगा। और वहां पर मंत्र की फिर जरूरत नहीं है, वहां पर कीर्तन इत्यादि भगवान की लीला कथाओं का श्रवण और कीर्तन और गोपियों का संग या गोपालों का संग, नित्य परिकर वालों का संग है। और इसके बाद में तब फिर वो लोग बैकुंठ में जाएगा, ब्रज में जाएगा, ऐसे नहीं डायरेक्ट नहीं चला जाएगा। इसलिए इसका सामंजस्य, इसके द्वारा सिद्धि हो जाएगी। पहले स्वरूप सिद्धि और अंत में शरीर छूट जाएगा, वस्तु सिद्धि हो जाएगी, बस वहीं तक वो रह गया, यहीं तक मंत्र का काम है, साधन का। सिद्धि में उसकी कोई जरूरत नहीं। इसलिए इस मंत्र के द्वारा गोलोक ब्रज में गए, यह बात ठीक है, दरवाजे तक पहुंचा दिया, अब तुम भीतर जाओ और वहीं तक मंत्र का कार्य रख। आ रहा है समझ में कुछ? इसलिए दोनों बातें ठीक है। बिना गोपाल मंत्र के और काम गायत्री के कोई भी आदमी कोई साधन ही नहीं कर सकता, बल्कि नाम संकीर्तन भी करेगा उसका ठीक नहीं होगा। केवल नाम संकीर्तन से नहीं होगा कुछ, क्योंकि उस शुद्ध नाम नहीं निकल रहा, इसलिए संबंध ज्ञान हो जाएगा। भावना एकाएगी मंत्र के द्वारा हमारा क्या स्वरूप है वो हो जाएगा, और इसके बाद में प्रबल रूप से हरि नाम संकीर्तन होने पर वो पूरा काम देगा। मान ले कि हमको घास छीलना है, तो किसी ने कहा जिस सोने की खुरपी से घास छीली, सोने की खुरपी से घास छीली जाएगी? उसे नहीं, वो तो लोहे के इस्पात के खुरपी से ही घास छीली। ऐसे ही जहां जहां पर जिस अत्यंत बद्धावस्था में ये सब जरूरत, अपने अपने स्थान पर सबकी जरूरत है, किंतु नाम संकीर्तन ही सर्वश्रेष्ठ है। ये वो साधन में भी है, सिद्धि में भी, मंत्र साधन में है, सिद्धि में भी। कोई भी सिद्ध पुरुष इसको नहीं करेगा, क्या जरूरत नहीं, अब तो हो गया था। खूब अच्छी तरह से इस चीज को समझो। इसलिए यहां पर भी कह रहे हैं संकीर्तन जो है बद्ध अवस्था में भी संकीर्तन की आवश्यकता है, किंतु उसके साथ साथ में गोपाल मंत्र और महाप्रभु के मंत्र इत्यादि जितने भी दिए गए हैं, गुरु जी ने जो दिया है उसकी उपकारिता है, संबंध ज्ञान युक्त करने और मन के धर्म से त्राण देने के लिए। यही मन का धर्म है, विषयों में आसक्ति होना, विषयों से आसक्ति को ये दूर कर देगा। कोई आदमी खूब अच्छी तरह से एक वर्ष भी करे, पांच महीने करे, देखो जैसे उसका क्या प्रभाव जरूर हो जाए विषयों से बाहर, जैसे हो गया उसको ब्राह्मण को, गोप कुमार को भी हो गया, ऐसे जरूर हो। और नहीं है तो कहीं गड़बड़ी है, कहीं बीज में गड़बड़ी है, अथवा कुछ पुष्ट बीज नहीं था, पुष्ट मंत्र नहीं दिया गया, देने वाला शुद्ध नहीं था, ये सब या हमारे करने में गड़बड़ी है, मन से हम नहीं करते, फांसी मारते हैं जहां माता खो, मन लगा करके श्रद्धा के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ में। और कृष्णस्य नाना विध संकीर्तनेषु तन्नाम संकीर्तनम् एव मुख्यम् तत् प्रेम संपद जननी स्वयं ग्रात सप्तम तथा श्रेष्ठ तमम मतम से। ये दोनों याद करने के लिए आप लोगों के लिए कहा है। कौन कौन याद किया है? याद है तुमको? कृष्ण के जितने भी प्रकार के नाम के कीर्तन हैं, उनके रूपों का, उनके गुणों का, उनके लीलाओं का, उनके परिकरों का, उन सब में सबसे पहले नानाविध कृष्णस्य कीर्तनेषु तन्नाम कीर्तनम् एव मुख्यम्। उनका नाम कीर्तन सबसे मुख्य है। यदि मैंने कहा जरा इधर आ जाओ, कौन आएगा? मैंने कहा जरा इधर आ जाना, तो आएगा कोई? ये बड़े गुणी आदमी हैं, बड़े सुंदर हैं, इनमें बहुत से गुण, इसलिए वो आ गए। कौन आएगा? और यदि कुछ भी ना कहें, जब बांकेलाल जरा इधर आना, तो ऐसे ही भगवान का नाम रूप गुण लीला इत्यादि जितने प्रकार के कीर्तन है, उसमें भगवान को बुलाने के लिए, भगवान को स्मरण करने के लिए भगवान का नाम संकीर्तन ही, उसके साथ में नाम संकीर्तन के साथ में रूप गुण लीला इत्यादि का कीर्तन हो तो और क्या। इस तरह से हे गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन, नामात्मक होना चाहिए। उसमें भी श्रेष्ठ जो नाम है कृष्ण परक, गोपियों के साथ संबंधित, वो नाम सबसे श्रेष्ठ है। तब प्रेम संपत जनने स्वयं रा, यदि कृष्ण के चरणों में ब्रज में प्रेम को जल्दी से जल्दी कोई चाहता है, तो संकीर्तन ही, नाम संकीर्तन ही सबसे पावरफुल है, सबसे शक्तिमान है, सप्तम तथा श्रेष्ठतम। इसलिए मेरे विचार से नाम संकीर्तन सबसे श्रेष्ठ है, प्रेम पुष्पम भाव के सहित। नाम संकीर्तनम पुरोक्तम कृष्णस्य प्रेम संपत्ति बलिष्ठ साधनम श्रेष्ठम परम आकर्षम मंत्रवत। ये जो नाम संकीर्तन है, पुरोक्तम कृष्णस्य, ऐसा कहा गया है सर्वत्र शास्त्रों में कि प्रेम संपत्ति को लाभ करने के लिए सबसे बलिष्ठ साधन है। इसलिए मेरे विचार से नाम संकीर्तन अब कीजिए, अब तब उपदेश दिया वो कीर्तन करने के लिए, श्री कृष्ण गोपाल हरण, इस नाम को जब वो पृथ्वी लोक में आए तो उनके गुरु जी ने वो नाम दिया। ये यहाँ पर एक शंका हो सकती है कि सनातन गोस्वामी तो चैतन्य महाप्रभु के समसामयिक, और उसी समय में महामंत्र का प्रचार चल रहा था, महाप्रभु नवद्वीप से आरंभ किया महामंत्र, जगन्नाथपुरी में भी महामंत्र चलता था, उसके बाद भी चलता था, तो सनातन गोस्वामी ने उसका कहीं भी ग्रंथ में जिक्र नहीं किया, महामंत्र के संबंध में नहीं लिखा। और बृहत गौतामृत में ये नाम के लिए भी यदि कहा तो श्री कृष्ण गोपाल हरे निकुंद गोविंद हरे नंद, तो क्या उनको पता नहीं था महामंत्र का? मालूम नहीं था उनको? और चैतन्य महाप्रभु यही कह रहे हैं, क्या कारण है कि इस मंत्र को नहीं
किया?
युग धर्म में तो उसमें भी नाम संकीर्तन युग धर्म है, कोई स्पेसिफिक के लिए कहा गया है न? क्या पलिसंतरण उपनिषद इत्यादि के द्वारा ऐसा प्रतीत होता है, सब साधारण जनों के लिए महामंत्र ही सबसे उपकारी, महामंत्र ही सब अवस्थाओं में लिया जा सकता है। यहां पर सनातन गोस्वामी विशेष रूप में कुछ कह रहे हैं, उसमें थोड़ा सा अर्थ निकालना पड़ता है। हरे कृष्ण कृष्ण परक और राधा परक लाने के लिए, और इसमें कोई बाहर से कोई अर्थ लगाना नहीं पड़ता। सहज रूप में राधा कृष्ण, राधा बल्लभ, राधा कांत इत्यादि का उल्लेख है, यशोदानंदन इत्यादि का उल्लेख है, इसलिए प्रकृति के लिए ऐसा कहा है। किंतु हम समझते हैं यदि कोई महाप्रभु के किए हुए या रघुनाथ दास गोस्वामी के किए हुए अर्थ को यदि कोई जानेगा तो निश्चित रूप में ये नाम नहीं करेगा श्री कृष्ण गोपाल हरि मुकुंद, वो क्या करेगा, क्यों करेगा, बड़ा विप्रलंभात्मक और सरस और ब्रज भाव से परिपूर्ण है। साधारण रूप में ये नहीं दिखता, जैसे बीज में कोई पेड़ नहीं दिखता, कोई पौधा नहीं दिखता, किंतु उसमें है। और यदि कोई पारखी व्यक्ति है तो देखेगा क्या, इसमें तो ऐसा चीज है जो उस चीज में नहीं है, कुछ देख लेगा। जैसे दो गहिया हैं, दो हड़ियों में दोनों दही एक समान ही है, एक मीठी भी एक में मीठा देकर के मीठा भी कर दिया गया और एक में नहीं किया गया। एक पारखी ने दोनों दही को एकत्र करके उसको देख करके जो मीठी थी और सफेद थी या लाल थी उसको रिजेक्ट कर दिया, और जो उतनी मीठी नहीं थी उसको कहा जी ये अच्छी, ये 10 रुपया किलो होने चाहिए, और जो मीठी है और देखने में रंगीन है उसका जी 1 रुपया किलो होना चाहिए, क्यों, वो सरपेटा उसमें से घी निकाल लिया गया है और तब उसको दही जमाया है और उसमें चीनी और कुछ सुगंधित चीज आर्टिफिशियल देकर के उसे बना दिया है और उसमें कुछ भी नहीं है, केवल दही वो साधारण रूप में जो बने उसमें प्रत्येक अणु अणु में भी घी है, इसलिए वो है। इसी तरह से इस नाम में हमारे गोस्वामियों ने इसका इतने प्रकार से 16 नाम है ना, 16 प्रकार से इसका अर्थ निकाल करके और रसास्वादन किया। जैसे हरे कृष्ण, और तो सब आप लोग अर्थ जानते हैं, हरे माने यहां हरति कुंजे कृष्ण जा सारा था, जो कुंज में कृष्ण को आकर्षण करती हैं और सेवा करती हैं प्रेम भाव से, वो है हरे। तो बतलाओ तो ये इसमें कहां है, और सब संबोधनात्मक सब राम कुंजे हरण करने के बाद में जब कृष्णम रमयति, कृष्ण को भी रमण कराती हैं, आनंद देती हैं, सेवा करती हैं, वो हरे वहां राम के साथ में। यदि कोई सद्गुरु से रसिक वैष्णव से इन सबका अच्छी तरह से अर्थ समझ करके और भावपूर्ण भाव से कोई महामंत्र करता है ना, तब उसका ये यथार्थ स्वरूप कुछ कुछ तब इसको समझेगा, जे नहीं टेढ़े रूप में उसको नहीं दिया गया अर्थ के द्वारा राधा कृष्ण नहीं यथार्थ ऐसा है। इसलिए सनातन गोस्वामी ने यहां पर किसी कारण से महामंत्र को नहीं लिया और इस मंत्र को लिया है, मंत्र नहीं मैंने ये नाम को, कोई भी जरूर इसमें कुछ होगा, नहीं तो कलयुगी जीवों के लिए शास्त्रों के अनुसार में ये महामंत्र ही सबके लिए करणीय और कृतनीय है। 6 बजे है, 6 बजे है ना, तो आज यहीं तक रहे, कल से फिर हम लोग विषय प्रसंग में आएंगे जहां पर हम चल रहे थे, नारद जी से और गोप कुमार से वार्ता होगी, उनको बैकुंठ में क्यों विरक्ति हो गई, इसके बाद में राम में क्यों विरक्ति हो गई, और उसमें तत्वों का निरूपण है, उसको ऐसा मत समझ लेना जैसे हमारे लिए उपयोगी नहीं है, ये सब को जानना भी आवश्यक है, और नहीं तो शुद्ध प्रेम ब्रज का प्रेम ये नहीं है, इसलिए इसको खूब सावधानी के साथ हम लोग सुने और चलें और भजन करें। वंचा कल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापतन्याय कृष्ण प्रेमाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनम् गौरत्विषये हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावन आंशुके प्रणमामि हा देविका तू भरगद गदयात्वाच जाते निपत्त भूमि भगवत भटारती अस्दुदस जन सकृत्मंदेदी जटंजागुरोच संविदतन पट्टर से बृंदारण्य निवासीन हृदय सद्दाभिरामोदर राठास्पंदेशित भक्त्या विभिन्नापराध कृप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं तां सर्वं प्रपन्नमस्ते चरणानि गुरवे गौरचन्द्राय कृष्णाय कृष्णभक्ताय वैराग्य युग भक्ति रसं प्रयत्न अपायन मानुन हेतु मंदम कृपांगु गिरिज पर दुख दुखे सनातन स्तम प्रभु माश्रयामि श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले मम रूपः कदा यं प्रजंतमुपेतमेतृपायनोतिहकाशयादिभाव पुत्रे तन्मयतया कर्वोभिने संक्रांति संक्रांति मैंने कहा संक्रांति किसको कहते हैं पंडित जी
क्रांति मैंने पार करना
क्रांति मैंने विद्रोह
नहीं मैंने क्रांति मैंने पैर से चलना
पैर से सम्यक रूप से चलने को संक्रांति का धीरे धीरे ना जल्दी जल्दी
धीरे
तो हम लोग तो सब समय संक्रांति में है
पारिवारिक संक्रांति हो सकती है जागतिक संक्रांति
एक तुरंत अष्ट तीर्थ वो कहीं जा रहे थे ना एक आदमी ने कहा कि महाराज जी पंडित जी आप इधर से मत जाइए तो क्या है तो इधर में बाघ एक है तो वो व्याघ्र आदमी को खा जाता है आप मत जाइए तो उन्होंने पहले उसकी व्युत्पत्ति की, व्याघ्र जिघ्र, जिघ्र धातु से ये व्याघ्र धातु ये बना है सब। तो जिघ्र मैंने होता है सुनना, वो तो खा नहीं सकता है तो वो सूंघ लेगा, अधिक से अधिक घाण वो करेगा, पर कुछ डर की बात नहीं है, वो बहुत अधिक से अधिक तो होता सूंघ ले सकता है, बात होगा तो वो चला गया। तो जब गया भीतर बनने तो सचमुच त्याग और एकदम गर्जन करके ऊपर टूट पड़ा। उनका जी ठीक ही भरा था, खादती अर्थ में भी कभी कभी व्यवहार इसका होता है, तो पंडित जी को उस समय याद नहीं आया, किन्तु जिस समय वो बाद में आक्रमण कर दिया है तब तक उनको खा चुका था। तो संक्रांति मैंने हमारे यहाँ 12 राशियां हैं, उन 12 राशियों में वर्ष में सूर्य उनको अतिक्रम करता है, जब जब उनको जरूर पार करता है, मेष वृष कुंभ मैथुन ये सब राशियां हैं। उन राशियों पर जब सूर्य जाते हैं तो उसी के अनुसार में ऋतुएं सर्दी जाड़ा गर्मी ये सब षड ऋतुएं सब उसी के अनुसार में होती है, जिसमें से मकर राशि कुंभ राशि मेष वृष इत्यादि ये प्रसिद्ध है। तो जब सूर्य एक राशि को चल करके फिर दूसरी राशि में प्रवेश करता है तो इसको कहते हैं संक्रांति। सम्यक रूप से अतिक्रांति जब एक को छोड़कर के दूसरे पर प्रवेश करता है तो उसको कहते हैं संक्रांति। आज के दिन में सूर्य सबसे दक्षिण दिशा में वो था, अभी तक दक्षिणायन चल रहे थे सूर्य, और अपने लास्ट बिंदु मकर रेखा कहते हैं उसे, मकर रेखा को पर तक पहुंचे थे, पहुंचे और अब उसको पार करके किधर आ रहे हैं, लास्ट बिंदु तक चले गए थे दक्षिण दिशा में, और उससे अब पार करके इधर में आ रहे हैं। आज के दिन उन्होंने पार कर 23 या 24 तारीख को बड़ा दिन था, 25 को 25 दिसंबर उस दिन से उस दिन उसको पार करके गए थे, उधर में थे, आज के दिन उसको पार करके उत्तरायण में, अब उसको कहते हैं उत्तरायण। अब ये उत्तरायण कब तक रहेगा,
देव उत्थान एकादशी तक,
देव उत्थान एकादशी है ना, हाँ, तो उसमें कौन रेखा पर वो आएंगे, उसको जब पार कर लेंगे तो फिर वो दक्षिण आएंगे, कर्कट राशि, वो कर्कट राशि में जाएंगे तब फिर वो दक्षिण आएंगे। अभी इसी में भीष्म पितामह जी इसी के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे ना, जहाँ मकर संक्रांति में पार होकर के सूर्य उत्तरायण में आए तब उन्होंने सही कुछ साधन इत्यादि के लिए कर्म मार्ग साधन में योगियों के साधन में उत्तरायण और दक्षिणायन का बहुत ही महत्व होता है। दक्षिणायन में यदि प्राण निकले तो उसकी गति कुछ दूसरी होती है, उत्तरायण में होने से उसकी गति, क्यों, अब सूर्य निकट आ रहे हैं इसलिए सूर्य की करणों के साथ में उनकी आत्मा मिल करके उस लोक में जाती है। तो आज के दिन में सूर्य मकर राशि को पार कर किए हैं इसलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। आज के दिन में तिल का दान सर्वोत्तम माना गया और तिल खाने, क्यों, जो ब्राह्मण गरीब हैं किंतु देश के लिए उपकार का कार्य करते हैं, परोपकार करते हैं, आत्म तत्व में चिंतन में लगे रहते हैं, जो खेती बाड़ी नहीं करते, धन संग्रह नहीं करते, उनको तिल खिलाओ, ठाकुर जी के लिए वैष्णव के लिए तिल दान, और स्वयं भी तिल खाना चाहिए, क्यों, इसके अंदर में तेल होता है जो शरीर को स्निग्ध रखता है, इसलिए ऐसी चीजों को दान किया जाए और ऐसी चीजें व्यवहार किया जाए तो शरीर स्निग्ध रहता है, नहीं तो जाड़े से शरीर में बहुत सी ऐसी चीजों का अभाव हो जाता है जिस पर शरीर रुखड़ा हो जाता है, खुजली हो जाएगी, चमड़े कुछ ऐसे हो जाएंगे। तो इसलिए इस सब को देख करके ही हमारे पर्व त्योहार और ये सब चीजें, इसमें लोग स्नान नहीं करते जाड़ों में, बहुत से लोग आलसी हैं, तो नियम बनाया गया ये इस दिन में जरूर स्नान करना होगा और डूब करके स्नान गंगा में, यमुना में, समुद्र में होगा। आज का सबसे स्नान करने का महात्मा सबसे अधिक कहाँ का है?
गंगा सागर।
आज लोग गए होंगे गंगा सागर में, कर्मी लोग जितने हैं
जो
पुण्य फल चाहते हैं वो सब गंगा सागर में गए। सबको कंबल बांटेंगे, कपड़े बांटेंगे, खाने का द्रव्य खिचड़ी इत्यादि सब बंटन करें। कुछ पुकार भी होना चाहिए, कर्मी ऐसा नहीं कि अपने लिए सब करें, कुछ दान भी होना चाहिए। ये वो ब्राह्मण गोवर्धन वाला इसी मकर संक्रांति पर गया था गंगा सागर। लोग कहते हैं कि गंगा सागर एक बार और तीर्थ बार बार। एक बार जब ये स्नान कर ले तो जब फेस गए क्यों, एक बार यदि कर लेगा तो उसका मन नहीं होगा जब फिर कभी जाए, नहीं जाएगा करूंगा भाई ना। वहां पर माना कि जैसे 50-60 हजार या 2-4-10 लाख आदमी आते हैं और छोटा सा टापू होता है, लोगों को टट्टी लगेगी, पेशाब लगेगा, कहां जाएंगे ना? वो किनारे किनारे पानी का के पास में करेंगे और जब ज्वार भाटा आएगा सबको बाहर करके ले जाएगा और उसी में लोग स्नान करेंगे। तो इसलिए पुण्य ऐसा एक चीज है, पुण्य का एक बार फल भोग कर लिया स्वर्ग में तो तेतम भुक्त्वा तर्कलोकम विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशन्ति। वहां जाएंगे ना तो वहां पर क्या है स्वर्ग में, वो गंगा सागर का फल है। काम क्रोध लोभ मद मोह मांस सब ये सब कुछ बढ़ जाएगा, कांडा कांडी का ज्ञान नहीं रहता। जैसे बृहस्पति चंद्र इंद्र इनको किसी चीज का ज्ञान नहीं रहता, जैसे कोई शराब पी करके मतवाला हो जाता है ऐसे कर्म मर्ग का फल सोमरस पान करते हैं। क्या बताए, काम क्रोध लोभ मद मोह मांस सब ये सब एकदम बढ़ जाता है, बढ़ करके उन लोगों को बुद्धि काम नहीं करती तो गर्भित काम भी वो कर लोग करते हैं और फिर वहां से नीचे गुरु हाथ पड़ते हैं इस जगत में। इसलिए यदि दान ही करना है तो जो सचमुच में संत हैं उनको कुछ लो दो तो वो कर्म मार्ग को वो जला देंगे, उसका फल भगवान के प्रेम में लगा देंगे। यदि कुछ लेना भी दे तस्मै देयम् ततो ग्राह्यम् सचो पूज्यो जथा ही अहम्, जैसे मैं पूज्य हूं ऐसे ही वैष्णवों को अपना समझ करके उन्हीं को लो और जो कुछ देते हैं तो वो ले लो, तो वो कर्म मार्ग उसका कुछ नहीं कर सकेगा। इसलिए गंगा सागर में भी भीड़ लगी हुई होगी और इलाहाबाद प्रयाग में भी गंगा जमुना और सरस्वती की धारा वहां पर मिली है, आज वहां पर भी बड़ी भीड़ होगी। पहले भीड़ होती थी एकांतिक हरी कथा श्रवण और कीर्तन के लिए, आज कुछ उसमें राजनीतिक टंटे भी उसमें लग गए हैं, कुछ गड़बड़ियां चलती हैं क्योंकि साधु लोग भी अब कम हैं। अब विशेष करके शुद्ध जो संत लोग हैं वो बहुत कम जाएंगे उधर, न तो जाएंगे महासागर में, सागर स्नान में भी नहीं जाएंगे और यहां पर भी नहीं जाएंगे, वह अलग शुद्ध रूप में वृंदावन में रहेंगे, यमुना जी में स्नान करेंगे, उनको यहीं से ही सब कुछ फल मिल जाएगा। और कुछ वो फल चाहते नहीं, वो तो प्रेम ही एकमात्र फल चाहते हैं। इसलिए हम लोग यहीं पर आते हुए गंगा जी को स्मरण करें, जमुना जी को स्मरण करें और शुद्ध प्रेम फल भक्ति प्रेम चाहे। संक्रांति का यदि है फल तो यही है। आजकल दान का भी महत्व है तो तुम लोग भी दान मत लेना। यदि कोई दान के हिसाब से भी देता है तो ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हैं। यदि उसका एक चावल का दाना भी तुम लोगों ने ले लिया तो फिर जन्म जन्मांतर गड़बड़ हो जाएगा, भक्ति में बाधा आ जाएगी। इसलिए खूब सावधानी के साथ में इन चीजों से अलग रहना, न दान लेना और न दान देना। आप लोग भी दान मत देंगे और दान मत लेंगे, कोई भी चीज दान मत दीजिए। यदि है तो सेवावृत्ति से उसे भगवान का प्रसाद समझ करके उसे कुछ दीजिए। ये जितने जीव हैं जगत के, ये भगवान के प्रिय हैं, उनको हम सेवा बस ये भावना से उनके उनको देने से भगवान इसको ग्रहण करें। दे किसको दिया ये मुख नहीं देखते थे। तो एक दिन कोई ब्राह्मण आया, ये दान दे रहे थे, कि मैं एक बीच का कर्मचारी हूं, न मैं लेने वाला हूं न देने वाला हूं। कहीं अभिमान हो जाए, ये तो है भगवान की वस्तु दी हुई और ये भगवान के सब सेवक हैं, बीच में मुझे ये ड्यूटी दी गई, ये प्रभु की चीजें प्रभु के लोगों को दो। यदि इसमें अभिमान है, मैं देने वाला हूं, जैसा कि हम लोगों को हो जाता है, जैसे हम मठ के रक्षक बनते हैं ना, तो सोचते हैं कि मैं इसका मालिक बन गया। किसी चीज के लिए घर में भगवान ने परिवार दिया तो सोचते हैं मैं इसका मालिक हूं परिवार का। ठाकुर जी का मंदिर है तो हम समझते हैं कि मैं ठाकुर जी के जितना चीज है ठाकुर का भी मैं ही मालिक हूं, उनका सेवक अभिमान नहीं। तो मैं तो सेवक केवल हूं, प्रभु की चीजें प्रभु के आर्डर से प्रभु की चीजें ही प्रभु के लोगों को दे रहा, मुझे अभिमान अंदर में कभी ना आ जाए कि मैं देने वाला हूं, इसलिए ऐसा करता। ऐसे ही हम लोगों को भी हो, नहीं तो अभिमान हो जाएगा। इसलिए किसी को दान मत दो, ना तो दान देने से उसका फल लेना पड़ेगा और दान ग्रहण करने से भी उसके अंदर में जितने पाप प्रवृत्ति पुण्य प्रवृत्ति है वह सब हमें संक्रमित होंगे, इसलिए वो भी नहीं करना है। इसलिए पहले के लोग क्या करते थे, मां टूकरी वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे। हम लोग कुछ भटक गए हैं अपने रास्ते से। जो चीज की जरूरत है बस जीवन निर्वाह के लिए प्रभु का प्रसाद ग्रहण करके मां टूकरी के रूप में जीवन निर्वाह करके भजन करते थे। अब हम लोग संचय करते हैं तो हमारी भी दशा मधुकरी जैसे मधुमक्खी की होती है वैसे हमारी भी दशा होती है। बिल जाते हैं बंदर पकड़ करके नोच करके और खा जाते हैं, मधुमक्खियों के साथ में छत्ते को ही खा जाते हैं। और कुछ मधु संग्रह करने वाले लोग पूरे छत्ते को ले लेते हैं और कपड़े में लेकर के ऐंठ देते हैं, मधुमक्खी और उसके बच्चे छत्ते अंडे फंडे सब मधु बन जाती है और सब मारे जाते हैं। तो हमारी भी यह दशा होती है, तो दान सुन करके भी हम लोगों को चेत नहीं होता है। इसलिए न तो दान लो और न दान दो, दो किंतु किस रूप में, प्रभु के सेवा के रूप में। अभिमान न रहे कि मैं दाता हूं और मैं ग्रहीता हूं। यदि लिया भी तो ये ठाकुर की सेवा में, और एक दाना भी उसका यदि हम लोगों ने कुछ लिया तो भक्ति तो दूर हो जाएगी, साथ साथ उसका कर्म फल भी हमारे अंदर में संक्रमित हो जाएगा। विषय का अन्न खाने से क्या होता है, मलिन चित्त हो जाता है, इसलिए भजन नहीं होता। कोई साधु व्यक्ति एक वेश्या कई भंडारा वृंदावन में कर रही थी, कुछ साधुन बन गई और कुछ रुपया जो कमाया था भंडारे में लड्डू और पेड़े बर्फी और शुद्ध घी की पूरी हलवा मन भोग खीर ये सब बनाया और वृंदावन सब संतों को निमंत्रण कर। जो संत थे वो तो नहीं आए, किंतु संत का वेश लेने वाले वो लोग आ गए। तो उनमें से एक अभी नवीन कोई था साधक, किंतु था अच्छा था। भजन करने की लालसा थी, अभी भजन में प्रवेश नहीं किया था, भजन किंतु करना चाहता था। वो भी धोखे में आ गया वहां और उसके दिए हुए भंडारे में बैठ करके खूब माल छका छका, मैंने खूब खाया। खाने के बाद में जब उठा तो एक आंगन से एक घर होकर के आना था और उस पर एक सोने की अंगूठी टेबल पर रखी थी। तो खा करके आ रहा था घर के माध्यम से और टेबल पर देखा सुंदर सोने की अंगूठी रखी गई, बस उसको भी हाथ से दाहिना हाथ से जूठा था, बाएं हाथ उठा करके पॉकेट में रख करके चला। थोड़ी देर के बाद में चला गया, बेस प्रसन्न हो रहा था। गया एक दो दिन बीता, कुछ खाया नहीं, वो सब कट्टी हो गया, पेशाब से निकल गया, पेट जब खाली हो गया उसकी दुनिया के लिए। मैंने अंगूठी आज तक जीवन में चोरी नहीं की, अरे ये अंगूठी हमने चोरी की क्यों की? तो वो खुद गया और कहा कि भाई मैंने ये अंगूठी ये चोरी की थी, ये आपकी वहां पर रख दिया। तो कुछ थे आदमी उसको मारने दौड़े, कुछ ने गाली दिया और जो साध्य व्यक्ति के थे नहीं नहीं ये चोर नहीं है, इसकी बुद्धि किसी प्रकार से खराब हुई। क्यों खराब हुई वो पूछने लगा वो साधु। अच्छा भाई ये भंडारा किसने दिया? तो अमुक बाई जी ने दिया। तो वो बाई जी का खबर लगाया, ये बाई जी कौन है? तो वो पता लगा कि कोई गड़बड़ की स्त्री है और उसने उस पेशे में जो पैसा कमाया उसका ये बना और उसका आज मैंने खाया। तो आज हमारा मन एक भंडारे खाने में ऐसा, आज जो दिन रात भंडारे खाने के लिए जुटते हैं, अधिकांश भंडारे ऐसे ही होते हैं बिंदा, बहुत कम अच्छे संतुलनों का होता है, बहुत कम। घर में जाते हैं किसी को लाने के लिए, मथुरापुरी संतति है किंतु फिर भी कर्मी लोग भी हैं, वो अपने बच्चे का वो ऐच करके तुम लोगों को दे देंगे, ऐसा होता है कभी? ऐच दिया, ऐच करके रख दिया, ये साधु लोग कोई आएंगे भिखारी उनको दे देंगे, वो साहब लोग तो साहब उसी में आ जाएगा, मालूम नहीं पड़ता। इसलिए इस सब चीजों में सावधान रख करके आप लोग साधन भजन कीजिए, जिस उद्देश्य के लिए हम लोग यहां आए तब फिर ये सब सुनने के हम लोग अधिकारी होंगे। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। बृहद भगवता गोप कुमार जी वैकुंठ धाम में गए। हम तो वैकुंठ धाम को छोड़ दो, स्वर्ग को छोड़ दो, अभी मैं बंबई गया था। यहां पर एक श्रोता बंबई की है, यहां आती है सुनने के लिए परिकथा, उनका मथुरा में भी। तो उन्होंने कहा था कि सर जब बंबई जाएंगे तो हमारे घर में आएंगे। तो गया तो उनका लड़का भी, बड़ा अच्छा लड़का, बहुत ही अच्छा। तो लड़का उसकी बहू वो सब आई ये हमारे घर में चली। तो हम लोग गए, कार ले आया, कार से ही अपने उनका कार अपना है। मैं गया तो वहां पर भूल भुलैया में पड़ गया, सचमुच में ऐसा सुंदर फर्श बनाया है, ऐने की तरफ नहीं चमकता है और मुझे भ्रम हो गया, जैसे दुर्योधन को भ्रम हो गया ना युधिष्ठिर महाराज जी के राय वो सभा में जिसको मैं दानव ने बुलाया बनाया। मैं तो देखता ही रह गया बा। इसीलिए महाप्रभु या महापुरुष भक्त लोग किसी भी राजा महाराजा के घर में नहीं जाते, साधारणों को भोग की कामना आ जाएगी, ओ हमारा भी ऐसे ही घर होता, हमारा ऐसा ही आश्रम होता, ये कैसे कैसे चीजें लगी नहीं बना सकते, तभी एक कामना भीतर से चलती है। जब इसी लोक में बंबई में ही ऐसी और उससे हजारों और लाखें लोग ऐसे होंगे जो उनसे भी प्रेरित होंगे, हम तो साधारण परिवार में गए तो ऐसा देखें। स्वर्ग की आप लोग कामना नहीं समझ नहीं सकते, स्वर्ग में कितना वैभव है, जाएंगे तो एकदम भूल जाएंगे ये सब।
वैकुंठ में जाने पर क्या होगा? कर्मशः ऐश्वर्य। कोई वैकुंठ में पहुंच कर वैकुंठ से निकलने की कोई भी कामना संकल्प नहीं कर सकता। इतना सुख की प्रतियोगिता वहां पर है, इतना रमणीय है, कोई आदमी बूढ़ा नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति बूढ़ा नहीं, कोई जन्म नहीं है, कोई रोग नहीं है, स्वर्ग में है, महाजन तपस्त तक है, पृथ्वी के आवरण में जो तो अष्ट आवरण है उनमें भी है, किंतु वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं। नित्य नवीन सुख वहां वैभव की अंतिम सीमा बिंदु है। जो इच्छा वहां की मिट्टी भी चीन में है, बातचीत कर सकती है, सब कुछ करने में समय। पेड़ वहां पर कैसे हैं? कल्प तरु के पेड़। भूमि कैसी है? चिंता मणिमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनम अपि। ऐसा वो स्थान है वैकुंठ, वहां ये पहुंचा है। नारद जी कहते हैं, अरे बड़े ये तो गंभीर बात, यहां पर तुम्हारा मुख सुखा का देखते हैं। मुख सुखा मैंने क्या?
मन खराब,
चिंतित हो, तुम दुखी क्यों हो? इस लोक में आकर के तो कोई दुखी रह नहीं सकता, और तुम कहो दुखी देखते हैं। क्या बात है? तुमको किसी चीज का अभाव है, किसी चीज का दुख है क्या? तो ये ऐसा वहां एक दुख है, वो सबको नहीं होगा, किसी विशेष को होगा जो इनको हुआ, किंतु कुछ ऐसी बातें होती हैं जो व्यक्त नहीं कर सकते। कुछ बातें तो हैं जो व्यक्त हम कर देंगे, किंतु किसी कारण से हमें क्षोभ या दुख हुआ है, उसको किसी से कहा नहीं जा सकता। बहुत से दुख हैं, मैया बाजार टूटे बेटी कैसे तुम दुखी हो नहीं बतलाए, बेटा क्यों दुखी है नहीं बतलाए, बाप को भी नहीं बतलाया, भाई को भी नहीं, बहन को भी नहीं। कोई बुजम फ्रेंड हुआ, बुजम फ्रेंड समझते हैं
अंतरंग
या अंतरंग सहेली है, तो वो किसी न किसी प्रकार से वो कांटा निकाल लेगी, समझ जाएगी उस भाव को। किंतु कुछ ऐसे भी भाव हैं जिसको कहा नहीं जा सकता, व्यक्ति ही नहीं किया जा सकता। तो वैकुंठ में ऐसा ही सुख है या दुख है जो कि व्यक्त नहीं। नारद जी भी सर्वअंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। उन्होंने देखा, ध्यान लगाया, आंख बंद की, क्यों दुखी? दुखी जब देखा कि ये दुखी है तो बड़े आनंदित हो गए। ऐसा भी कुछ दुख है जिसको देख करके आदमी आनंद हो जाएगा है? क्या हो सकता है? यही सब चीजें व्यक्त करना जरा कठिन है। कोई दुख है, दुखी है, कोई सुखी है। उद्धव जी जाते हैं ब्रज में, आनंद जी डकार मार करके रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे हैं? कृष्ण के लिए। ऐसा पुत्र सबको नहीं, और वो हमें छोड़ करके चला गया, बड़े दुखी हो रहे हैं। और ये मन ही मन क्या हो रहे हैं उद्धव जी? आज हमारा परम सौभाग्य है कि हम एक ऐसे व्यक्तित्व को यहां पर दर्शन कर रहे हैं जो भगवान के लिए रो रहा है। सब लोग रोते हैं अपने लिए, सब अपने लिए। भाई मर गया तो रोते हैं किसके लिए? भाई तो मर गया ना, तो भाई के लिए रोते हैं ना अपने लिए? मालूम तो होता है कि भाई के लिए रो रहे हैं, किंतु भाई के लिए नहीं रोते। भाई रहता तो हमारी सब प्रकार से सहायता, अब मैं असहाय हो इसलिए तो रोते। पिताजी मर गए इसलिए कि पिताजी रहते तो हमारी जो मनोकामनाएं थी सहज रूप में हो जाती। स्त्री मर गई, बड़ी सुंदरी खूबसूरत थी, बड़ी सेवा करती थी, खाट पर पलंग पर बैठे बैठे पानी और सब कुछ, खाना भोजन सब दे दी। अब वो चली गई, हा है रोते हैं। तो स्त्री के लिए रो रहे हैं, अपने लिए रोते हैं। तो
सब लोग अपने लिए रोते हैं, किसी स्थिति में पिता पुत्र के लिए रोता है, वो भी किंतु अपने लिए ही रोता है, मालूम नहीं पड़ता, किंतु है असल में वहीं पर। तो यहां पर मैं देखता हूं ये व्यक्ति जो नंद बाबा हैं, आज कृष्ण के लिए सचमुच रो रहे हैं, अपने लिए नहीं। कितना अगाध प्रेम इनके अंदर में है, अब सोच रहे हैं यदि कहूं नंद महाराजा विश्व ब्रह्मांड में सबसे परम सौभाग्यवान है, ये कहूं, ये कहना ही उचित है, ऐसा तात नहीं देखा जाए। कृष्ण के विरह में तड़प रहा कोई हो, ऐसा हमको थोड़ा सा भी हो जाता है, एक बार आंसुओं के बुंदे कृष्ण के लिए निकल आता भगवान के लिए हमारा जीवन साथ चाहते हैं तो निकलता है आंसू, हृदय द्रवित नहीं होता है, पुलकित नहीं होता है। महाप्रभु जी स्वयं कह रहे हैं क्या उसको, नैन अंगल दास सुधार्य बदनम गदगद रूप भया जी पुलक निजितम बपु पकड़ा तो नाम ग्रहण भविष्यति, भविष्यति मैंने क्या हमें ऐसा अवसर होगा जिस दिन आपका नाम लेते लेते आंखों से आंखें तरंग हो जाएंगी, कई धारावत अभिच्छिन्न गति से हमारे आंसुओं का प्रवाह कभी नहीं रुकेगा और रोमांच हो गए, हृदय द्रवित हो जाएगा, कभी जमीन में लौटूंगा, कभी हंसूंगा, कभी रोऊंगा, कभी गाऊंगा। आज ये सब उद्धव जी ने देख रहे हैं, आज कितना मैं सौभाग्यशाली हूं, इतना महान व्यक्ति का मैं दर्शन पा रहा हूं, क्या कहूं, आप बड़े सौभाग्यवान हैं, किंतु नहीं ऐसा कह नहीं सकता। एक आदमी रो रहे मैं कहा खूब रोवो खूब रोवो, ये तो मैं कहूं जैसे महाराज आप चुप होइए, तो जो आदमी कृष्ण के लिए रो रहा हो आज जगत के लिए यही अभिलषणीय है, अभिलाषा करने जो गए जो हमारा भी ऐसे दशा हो, वो यदि कृष्ण प्रेम में रो रहा हो इतना सौभाग्यवान हो, उसको मैं कैसे कहूं जो रो रो मत भी और वो दोनों में कोई नहीं कर सकता, क्या कहूं उनको, कैसे समझाऊं। नंद बाबा के लिए एक भी शब्द नहीं निकल रहा है उनके लिए, हृदय में आनंद है जो ऐसे महापुरुष का दर्शन करके हमारा जीवन आज कृतार्थ है, और वो रो रहे हैं। ऐसे ही नारद जी के मन में ऐसी भावना हुई, वो ये कितना बड़ा भारी सौभाग्यवान है जो यहां पर भी ये दुखी हो रहा है, किस लिए दुखी हो रहा है, ये चाहता है जो नारायण कृष्ण हो और इनके साथ में गोचारण करूं, इनके साथ में रहूं, ये गलबहिया हमारे ऊपर में दे दे, मैं गलबहिया दे करके मैं मित्र जैसा हो जाऊं दोनों, या कृष्ण अरे कुमार अरे गायों को जरा उधर से ले आना, तो इधर गाय प्यासी है इनको पानी पिला देना और यह अदर लाओ हाथ करके ले आओ, मैं कृष्ण का आदेश पालन करने के लिए बड़े प्रेम के साथ में जाऊंगा। कभी हमको कृष्ण गले से लगा लेंगे, हम कभी लगाएंगे, कभी कृष्ण खाते होंगे जूठा अपना हमारे मुख में दे देंगे, और कभी मैं उनको अपना जूठा खिलाऊंगा, कभी कृष्ण सो रहे होंगे यशोदा के पलंग पर और उन्होंने झट पायों में धूल भरी हुई वृंदावन की और एकदम ऐसे ही उनके घर में पहुंच गया और उसके पलंग पर पहुंच करके कृष्ण सो रहे हैं, ये भी सोते सोते जाकर के पकड़ लिया, नहीं अभी सो रहा है, गायें आ गई दरवाजे पर और तू सो रहा है वो सो तू ये सब करना चाहता है। आलिंगन चिंतन इत्यादि जो सहज रूप में सखाओं के लिए उपलब्ध है ऐसा चाहते हैं, किंतु नारायण क्या करते हैं, नारायण के सामने जाता है महाराज मंगल हो ऐसे हाथ मुद्रा दिखलाते हैं, कोई हमें प्रणाम किया ना तो साधु लोग क्या करते हैं, माने क्या हमारा कल्याण मंगल तुम्हारा हो, अनेक का नारायण नमो नारायण तो नमो नारायण कर और नहीं तो ऐसे बहुत साधु प्रणाम कर रहे हैं तो क्या करेगा वो, नारायण कहते हैं अपने मुद्रा इसको कहते हैं मंगलमय मुद्रा, अभय हो अभय मुद्रा कल्याण तुम्हारा, किंतु इसका मन करता है कि मैं उठ करके जाऊं दौड़ करके इनको गले से लगा लूं, एक साथ में बंसी बजाएं, किंतु ये हो नहीं पाता। इच्छा क्या रात में इनके साथ ही एक पलंग पर सो, किंतु लक्ष्मी जी चलाकी चतुराई किसी प्रकार से बाहर कर देती हैं, और यदि नहीं निकले वहां से तो क्या करेंगे लक्ष्मी जी, जय विजय को बुला लेंगी, कहिए ये मानता नहीं है उसको, जरा यदि ऐसे नहीं है तो ऐसे इसको बाहर कर दो, उसे बाहर किसी न किसी प्रकार से कर दो। और ये जब गाता है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद, गोविंद हे नंद किशोर कृष्ण, हा श्री यशोदा तनय प्रसिद्ध, श्री वल्लभी जीवन राज देश। बंसी में बजाता है और फिर अपने आप उच्चारण करके नृत्य करने लगता है। अरे वैकुंठ वाले मिल जाते हैं सब, आप ये देखो ये कैसा पगला है, अरे नारायण प्रभु जो समस्त जगदीश्वर हैं, जगदीश्वरों के ईश्वर, इनको ये गोपाल बतलाता है, गैया चराता है ये, रखाल बनाता है, देखो तो इनकी कितनी बड़ी बदनामी कर रहा है, दूध दोहने वाला वो बतलाता है, और गोपालियां जो निम्न जाति की हैं उनका पति बतला रहा है, और यशोदा जो ग्वालिनी है उसका पुत्र बतलाते हैं। अरे वो किसका पुत्र है, ब्रह्मा जैसे शंकर जैसे सब उनके लोग हैं, उनके बनाए सृष्टि में, और उसको किसी का पुत्र बतला रहा है किसी को, अरे ये देखो ये क्या काम, उनको कहता है जो ग्वालिनी को घर में घुस करके चोरी करता है उसको चोर बतलाते हैं, कहते हैं जी तेरे ये प्रभु का तो ये बदनामी हो रही है। अरे इनको कहो सहस्त्रमुख वाले जो शस्त्र मुख वाले जो विष्णु हैं उनके भी ये मूल हैं, संता भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम गगन सदृशम इत्यादि, ऐसे इनकी स्तुति होनी चाहिए, सबको आशीर्वाद देने वाले कल्याण करने वाले प्रभु के रूप में है, इनको ग्वाला चोर झूठा ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हंसते हैं कोई कोई कहते हैं नहीं भाई ये नारायण की ही नारायण ही तो कृष्ण बने थे और लीला की थी, इसमें कोई बात नहीं, कोई कुछ कहते हैं कोई कुछ कहते हैं और दिल्लगी ही करते हैं इससे, अरे भाई ये वैकुंठ है ये भूलोक नहीं है, यहाँ पर ये सब बातें नहीं होनी चाहिए ने? कोई कहते नहीं ये ठीक है, प्रभु अपनी लीला करते हैं आनंद के लिए, भक्तों के विनोद के लिए, इसलिए नारायण ही कृष्ण और राम इत्यादि के रूप में कोई कुछ कर नहीं, किन्तु इससे इसकी तृप्ति नहीं, उसको बहुत बार लज्जित होना पड़ता है। मान लिया कि कोई ग्वारिया है यहाँ का, श्री राम है सुबल है कृष्ण द्वारकाधीश है, सुधर्मा सभा में कृष्ण बैठे थे, कैसे बैठे हैं महाराज विराज द्वारकाधीश के रूप में, उग्रसेन वसुदेव जी बलदेव प्रभु और जदवंशी जो वृद्ध हैं उनके दाहिने तरफ में, गग इत्यादि जो बड़े बड़े ऋषि महर्षि हैं वो सामने बैठे हुए, गद सांब इत्यादि और उनके पुत्र अनिरुद्ध प्रद्युम्न सब उनके बाएं तरफ में बैठे हैं, पीछे चीक में सत्यभामा रुक्मणी प्रभृति रानियां देवकी इत्यादि माताएं सब चीक समझती हैं, चीक के अंदर से उधर में भीतर में बैठी हैं। उस सभा में एक गोप किशोर यदि वहां पर जाए कैसा, कछनी काछे हुए हाथ में लकुटिया टेढ़ी में ही, बंसी हाथ में हो बांस की और यहां पर मोर का पंख लगा लिया हो, अभी गैया चरा करके शाम को आता है धूल धूसरी धो उसके कपड़े लग गए, वो यदि उस सभा में पहुंच जाए उसमें कहेंगे ये कहां का आफत आया, ये तो अभी हमारा गला पकड़ लेगा। तो कृष्ण चुपचाप ऐसे बैठ जाएंगे और देख करके भी नहीं देखेंगे, मैं देख करके भी नहीं देखेंगे, उसका इतना उत्साह के साथ में आया था बेचारा, उसका उत्साह क्या होगा, यदि मान ली कि कृष्ण अपने भक्त वात्सल्यता से उदारता से उसे बुला करके अपने पास भी बैठाएं तो नहीं बैठेगा, देखा गाड़ी पर
ये कैसे छत्र, कैसा चामर, कितने ये सब लोग हैं, और अपना देख करके उसको लग जाएगी, वो बैठे कहीं लौट करके चला जाए। जहाँ पर की रुक्मणी सप्तभामा प्रभृति रानियां हो, हीरे जवाहरातों के आभूषणों से मंडित हो, वहां पर कोई दधी का मटका लेकर सिर पर और चुंदरी और कुर्णनी साधारण रूप में, और वो लाल लाल क्या होता है,
गुंजामाला
लगा ले बिना पैसे बांटा, और फूल की ये लगा ले, वहां पर जाएगी? इसलिए कभी नहीं गोपियां जाती, वहां पर उनका आदर नहीं होगा, वो जगह ही नहीं उसकी। ये सोच रहे हैं ये जो गोप कुमार है, ये इतना ऊंचा स्थान का है, कृष्ण का अपना मित्र है, वो समझ गए इसको यहां पर कभी भी संतोष नहीं हो सकता है, किंतु अभी स्वरूप से भ्रष्ट है, अभी स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है। वैसे ही हम लोगों में से बहुत से ऐसे होंगे जिसका स्वरूप गोपी का भी हो सकता है, सखा का भी हो सकता है, यदि उनको सौभाग्य ऐसा हो कि वो स्वर्ग में या बैकुंठ में जाए, उनको अच्छा नहीं लगेगा वहां। हो सकता है नारद जी आए और उनमें से किसी का एक स्वरूप देख लें और देखे जी ये तो खास राधा जी की किंकरी है, किसी से कहीं नहीं, नहीं। किंतु मन ही मन में उसको प्रणाम करेंगे, भले ही यहां पर उसको स्वरूप के रूप में नहीं, किंतु वो समझ जाएंगे, गुरु समझ सकते हैं। ऐसे ही आज गोप कुमार का भाव देख रहे नारद जी समझ गए, बड़े प्रसन्न भए, प्रसन्न होकर के क्या कहें न कहें सोच में पड़ गए, और फिर उनको बताया, ओ मैंने नारी देखा, आपको जो रोग है ये रोग साधारण रोग नहीं, इस बैकुंठ में इसका इलाज नहीं है, इसकी दवा बैकुंठ में नहीं है, यहां रहने से ये मर्ज बढ़ जाएगा, अब इसके संबंध में मैं तुमको कुछ बतला रहा हूं, तुम असंकोच स्नेह चाहते हो, जिसको कहते हैं विश्रम्भ भाव, बैकुंठ में संभ्रम भाव, चैतन्य चैतामृत में भी कहा गया है कि संभ्रम प्रीति के मोर शिथिल प्रेम नहीं मोर प्रीति, प्रेम है किंतु वहां पर ऐश्वर्य है अधिक, प्रभाव अधिक, और वो ऐश्वर्य के भाव से डर करके उनकी सेवा करता है। रामचंद्र जी पलंग के ऊपर में है और हनुमान जी क्या है नीचे बैठे हैं, और नीचे से थोड़ा सा खड़े होकर के ठंड के दिनों में रामचंद्र जी का पद संवाहन करना है, क्या करेंगे नीचे से रह करके किसी प्रकार से रजाई के ऊपर से थोड़ा थोड़ा, जिसको संभ्रम भाव नहीं है, विगत संभव संभव माने ऐश्वर्य भाव, अंतर दोनों में नहीं है, वो ऐसे नहीं, वो विगत संभव करके प्रेम से सेवा करता है, तो भगवान उस सेवा से ऐश्वर्य में ही सेवा से प्रसन्न तो हो जाएंगे, किंतु जैसे नारद जी हैं, नारद जी की बात छोड़ दो तो सब रसों में जय विजय, और सब भगवान के सब लोग पार्षद लक्ष्मी जी इत्यादि, इनका प्रेम विसंभ नहीं है बल्कि क्या है
संभ्रम,
संभ्रम सम्यक रूप, भ्रम माने उनका ऐश्वर्य देख करके और अपना छोटापन देख करके, क्षुद्रता देख करके बीच में एक भ्रम सा पैदा होता है, डर जैसा, जिसको कहते हैं संभ्रम, यह ऐश्वर्य के द्वारा होता है, इसलिए ऐश्वर्य के द्वारा शिथिल प्रेम में प्रभु का कितना भाव है, किंतु अभी यदि हम करना चाहें इस बद्धावस्था में उसका भान करने तो अपराध हो जाए, यद्यपि यह शास्त्र में लिखा है विश्रम है न गुरु सेवा, विषम रूप में गुरु की सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ पर विषम का तात्पर्य ये बंधु क्या है, गुरु जी को बंधु समझो, बंधु जैसे माता पिता भाई बंधु होते हैं मित्र, ऐसे सेवा करो जैसे कि घर में कोई बंधु आ गया तो कहते देखो भाई इसके लिए कुछ खाने के लिए लाओ, तब तुम जाएगा, तुम्हारा कोई मित्र आ गया तो हम कहेंगे कि भाई तुम इसके लिए कुछ खाने ले आओ, इसके लिए देखो सुनो ये सब कहेंगे, ये अपने आप करेगा, आपने आप करेगा। इसलिए यदि सेवक उत्तम है तो बिना गुरु के आदेश के गुरु के मन में जो चीज है उसको अपने आप करेगा, ये उत्तम का लक्षण है। जो कहने पर करता है वो मध्यम है, और जो कहने पर भी करता है, गुरु जी ने कहा जाओ महाराज जी को बुला लाओ तो उत्तर करेगा महाराज जी अब तो शाम हो गई है अंधकार हो रहा है, तो गुरु जी समझे अंधकार है इसलिए इसको ऑर्डर नहीं दे, तो गुरु जी ने नहीं नहीं अंधकार हो गया है तो क्या है तो जाओ जाओ, महाराज जी रास्ते में बहुत कुत्ते हैं माने क्या
अच्छा
कुत्ता है तक लकड़ी ले लेना हाथ में डंडे कोई बात नहीं, गुरु जी का डंडा ले लेना, अच्छा मैं जा रहा हूं किंतु यदि न मिले तो यदि कहीं चले गए हैं तो हमारे जैसे ठेठा यदि गुरु सेवक हो तो ऐसा ही प्रश्न करेगा, तो ऐसे सेवक को क्या कहते हैं, सेवक में से निकाल दो तो क्या रहेगा, बक माने बगला भगत, एक पैर से पानी में खड़ा रहता है ध्यानस्थ हो करके रखता है, जहां मछली ने चाल दिया उठा लेगा और फिर साधु बन जाएगा। तो ऐसे ही जो बिना उत्तम भक्त होता है सेवक, वो यथार्थ सेवक है, मध्यम अधिकारी किसी हालत में लिया जा सकता है मध्यम, और ऐसे तर्क वितर्क करने वाले ये तो सेवक ही नहीं। इसलिए जो अपने गुरु के मन की बात नहीं समझेगा तो कृष्ण की मन की बात कैसे समझेगा, इसलिए उन लोगों के लिए वहां जाना, इसलिए प्रतिपूर्वक संभव रूप से यहीं पर से गुरु की सेवा करने के लिए करेंगे। यदि गुरु से कोई दुराव है छिपाव है अपना हृदय खोल करके उनके सामने नहीं रख सकते हैं तो भगवान के सामने भी क्या रख सकते हैं, यही तो शिक्षा का आधार है ना, शिक्षा का यहां पर निष्कपट होकर के गुरु सेवा करना हम लोग सीखें तो सीखें। आज नारद जी देखते हैं कि वहां बड़ा भारी विषम सेवक है ये, इसलिए इसकी रुचि नहीं हो रहा है, अब उसका तत्व बतलाना आरंभ किया है। ये देखो यहां पर बैकुंठ में ऐसा ही होता है, किंतु बैकुंठ की प्रत्येक चीजें जो होती हैं वो चिन्मयी है, और यहां पर प्रभु के हजारों रूप हैं, वो हजारों रूप माने कैसे, इसी बैकुंठ में कहीं बराह देव हैं, कहीं मीन देव हैं, कभी कूर्म देव हैं, कहीं नृसिंह देव हैं, कहीं वामन हैं, कहीं परशुराम हैं, कहीं बलदेव हैं, कभी कौन कौन है, 24 प्रकार के तो लीलावतार गिनाए गए हैं, तो 24 ही नहीं 24 कोटि से भी अधिक अनगिनत भगवान के अवतार हैं, किंतु ये अवतार एक से दूसरे नहीं है। यहां पर जो तुम देख रहे हो भगवान के प्रकोष्ठ सब, ये सब नित्य हैं, है एक, किंतु भक्तों के भक्ति के तारतम्य से ये ऐसे प्रतीत हो रहे हैं, एक ही हैं, किंतु प्रतीति उनकी अपने अपने भक्ति के तारतम्य से ऐसा दिख रहे हैं। जैसे उन्होंने यहां पर बतलाया है सौभरी ऋषि थे वृंदावन में, यमुना के किनारे एक बन गया था अलग से कट करके जिसको हद कहते हैं आप, झील तो झील से छोटा है, उसको काली हद कहते हैं, इसी में काली अपनी स्त्री और बाल बच्चों के साथ में रहता था, तो सौभरी ऋषि उसमें तपस्या करते थे 10,000 वर्ष तपस्या की, 10,000 वर्ष की आयु के बाद गरुड़ से कुछ विरोध हो गया, अपराध हो गया, एक मत्स्य को और मच्छी को जोड़ा खाते हुए देख करके उनके अंदर में काम की भावना आई, कोई वैष्णव अपराध किया है इसलिए, और फिर उन्होंने 50 रूप धारण किए और मनघाता की 50 लड़कियों के साथ में उन्होंने शादी की और 50 महल बनाए, 50 बगीचे बनाए और ऐसा किया कि इंद्रपुरी भी उसके सामने लज्जित हो जाए, इतना भोगों का उपकरण, और उसके साथ में रह करके 10,000 वर्ष तक रहे, नाती पर नातियों से सब कुछ सारा घर भर गया। यहां पर मनघाता एक दिन आए, ये लड़कियां तो हमारे बिना रहती नहीं थी, आज ये लड़कियां हमें स्मरण नहीं करती और पिताजी के घर में पिहर में कभी आना ही नहीं चाहती है, क्या बात हो गई। तो जब गए और वैभव देखा, वैभव, इसीलिए लड़कियां हमारी अब नहीं अपने हमारे यहां आना जाना चाहती। यहां पर जो उनके जो 50 रूप बने हैं वो कैसे रूप हैं, वो काय जीवन, एक हाथ उठाएगा तो सब हाथ उठाएंगे ना, एक बोलेगा तो सब बोलेंगे, एक सोएगा तो सब सोएंगे, एक चलेगा तो सब चलेंगे।
एक रानी एक लड़की खाने के दिया तो नहीं गया तो कैसे खाएगा,
वो ऐसा ही होगा, वो काय जीवन शादी में ऐसा ही होगा, इसी को कहते हैं काय जू। अर्थात एक असल है बाकी नकल है, किंतु दिखता है एक ही जैसा, भगवान का ऐसा नहीं होता, भगवान का सभी रूप सभी है। विशेष करके द्वारका के ऐश्वर्य में और वृंदावन के माधुर्य में एक विशेष बात है, प्रसंग तो नहीं है तभी बतला देते हैं, प्रसंग आ गया है, विशेष बात है यहां पर कि कृष्ण 16,000 या 1 करोड़ या 10 करोड़ या अगिनत गोपियों में अगिनत कृष्ण होकर के उनके साथ में हाथों में कोई बैठ रहे हैं, बैठ करके नृत्य कर रहे हैं, और कोई हाथों में हाथ, कोई ऐसा स्वर आलाप कर रहे हैं, कोई कुछ, एक एक गोपी एक एक पोज कर रही है और कृष्ण भी उसी पोज में उनके साथ में नृत्य कर रहे हैं। द्वारका में एक ही साथ में कृष्ण 16,000 महिषियों के साथ में 16,000 रूपों में विवाह किया, कहीं पाशा खेल रहे हैं, कहीं चौसठ खेल रहे हैं, कहीं ब्राह्मण को गैया दान दे रहे हैं, कहीं गठबंधन हो रही है, किसी घर में हवन हो रहा है, किसी घर में कुछ हो रहा है नहीं? यहां पर भी एक ही कृष्ण है और सभी जो कृष्ण जैसे दिखते हैं वो सभी कृष्ण है, स्वयं ही रूप जैसा है, उसमें कोई अंतर नहीं। इसलिए यहां पर तो ऐश्वर्य एक ही कृष्ण का इतना रूप प्रकाशित हुआ है, किंतु भिन्न भिन्न रूप है, किंतु सभी एक है, सब सर्वशक्तिमान है, सभी ऐश्वर्यमय है और एक एक रूप में स्वयं सब कुछ करने की है। एक कहीं घर में उनको रसोई बनाकर के खिला रही है, एक वहां खा रहे हैं, कहीं दाल पूरी खा रहे हैं, कहीं चावल दाल खा रहे हैं, कहीं खाजा खा रहे हैं, कहीं पकौड़ी ले रहे हैं, कहीं परमान्न पी रहे हैं, कभी कुछ, कहीं शादी हो रही, कुछ हो रही है, किंतु यहां पर यह ऐश्वर्य है सर्वशक्तिमत्ता की वजह से इतने रूप और सभी रूप भी सत्य। वृंदावन में क्या हुआ, वहां ऐश्वर्य की भूमि नहीं है, ऐश्वर्य होने पर भी वहां पर माधुर्य है, इस चीज को अच्छी तरह से समझे कैसे, वहां पर जो 16,000 या 1 करोड़ जो कृष्ण दिख रहे हैं गोपियों में, करोड़ों करोड़ गोपियों में, करोड़ों करोड़ एक एक दो दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, अथवा दो कृष्ण के बीच में एक गोपी, या दो गोपियों के बीच में एक कृष्ण, दोनों एक ही ऐसे जो दिखाई पड़ते हैं, यहां पर तो ऐश्वर्य नहीं कल्पना करना पड़ेगा, यहां पर क्या होगा, माधुर्य, माधुर्य मैंने नर लीला के अनुरूप, और जो नर लीला के विपरीत हो उसको कहते हैं, जरूरी नहीं है कि ऐश्वर्य हो और न हो,
किंतु नर लीला के अनुरूप है तो वो माधुर्य है। अर्जुन विश्वरूप देख करके चकित हो गए और बोले जैसे मैं आपका सखा नहीं, आपको जो सखा है इसके लिए मैं महा अपराधी हूं, अब भविष्य में कभी भी सखा नहीं कहूंगा और कभी भी अपना साथी आपको घोड़ों को चलाने के लिए धोने के लिए नहीं बनाऊंगा, ये हमारा अपराध है। ऐश्वर्य बुद्धि आ गई, नर लीला का अनुरूप नहीं हुआ इसलिए यह ऐश्वर्य। वसुदेव देवकी कृष्ण को देख करके स्तन पिलाना और प्यार करना भूल गए मथुरा में कंस मारने के बाद, ये नर लीला नहीं इसलिए यह ऐश्वर्य। वृंदावन में इससे बड़ी बड़े बड़े गोवर्धन को धारण कर लिया तो भी आज यशोदा माँ का की छाती न बहुत बढ़ गई, क्यों? आज हमारा बेटा गोवर्धन को धारण कर लिया, बेटे का भाव ये दूर नहीं हुआ, ऐश्वर्य है किंतु बेटा का भाव आज आकर के उनके हृदय में, आज हमारा बेटा इतना बलवान जो विश्व में ऐसा कोई बलवान नहीं। गोपियां कृष्ण के लिए कह रही हैं, भ्रमर से कह रही हैं, अरे भ्रमर भ्रमर नहीं, अरे दूत काले से अब हमारी संधि नहीं हो सकती, कस्मिन कालम किसी भी काल में नहीं होगी संधि, बड़ा कुटिल धोखाबाज सूथा लबाज उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करेंगे और उससे मित्रता हमारी संबंध स्थापित नहीं हो सकता कभी, क्यों? भगवान है ना। पूर्णिमा जी ने कहा, हम जानती हैं पूर्णिमा जी के बात पर हम विश्वास करते हैं, उन्होंने कहा था जैसे ये पहले जन्म में राम था काला था, इस समय जैसा काला वैसा ही काला, वो रूप नहीं बदला, कहता है तो स्त्री जीत है अतः क्या मैं बहुत बड़ा कुमार हूं, स्त्रियों का वशीभूत कभी नहीं होता, किंतु वशीभूत होकर के अपनी स्त्री को साथ ले लिया, वन जंगल में भी साधु का रम वेश रमाया और अपनी स्त्री को कहा कि तुम भी चले आओ हमारे साथ। स्त्री ने कहा आर्य पुत्र यह हिरण जा रहा है ना, यह सोने के समान सुंदर, आहा यदि पकड़ कर लाए तो अच्छा ले सकते, अब तो दिन आ गया है एक वर्ष की और बाकी है, 11 वर्ष बीत चुके हैं ना, 13 वर्ष एक वर्ष का, तो इसको यहां रख देंगे और जाएंगे तो भक्ति को भाभी बड़ा प्रसन्न, और जब ये पकड़ में नहीं आया आपने बाण से इसे मार दिया तो इसको मारने के बाद में चमड़ा उधेर कर इसका सुंदर मृग छाला, और भैया इस पर बैठने में इसको बड़ा आराम होगा और आप भी इस पर बैठी जाइए। लक्ष्मण ये कहा एकदम माया है, राक्षसी मायाओं मायावियों का ये कार्य है, आप कृपा करके मत पधारिए। राम को कहा कार्य नहीं आप ला दीजिए, लक्ष्मण की बात नहीं माना, बात किसकी माना, स्त्री भाषा है ना, स्त्री का वशी, और ऐसा व्यक्ति अपने को कह रहा है कि मैं स्त्री का वशी भूत नहीं, और एक दूसरी स्त्री आई कहा है तू आ गई ना कंता थी प्रेम की भीख मांग रहे थे, उसका दोष क्या था, प्रेम से का भीख मांगना ये कोई दोष की बात है, कोई मान सकता किसी के रूप पर पिदा हो सकता है कोई और अपना सर्वस्व दे सकता है या दे सकती है कोई, तो उसका तो स्वभाव स्त्री जाति त्रिभुवन का सौंदर्य लेकर के वहां पर पकड़कर क्यों न हो जाए, तो इसलिए उसका दोष तो था नहीं, तो उन्होंने क्या किया उसका नाक कान पता नहीं बतलाओ तो, अरे भाई कोई कारण होना चाहिए, और छीप करके बाजी को मार दिया, अरे मर्द थे तो आमने सामने की लड़ाई में तो करके मैं उसको मारते, ऐसे ही बलि सुनते हैं कि बलि भी इनका सत्य युग में यही बने, तो बलि ने क्या किया तीन पर झगुल मारी, जब वो देने के लिए तैयार हो गए तो बलि की बेटी थी उसने कहा जा रहे जिस रूप से तुमने मांगा उसी पैर से तुम आओ, इस पैर से नहीं है मैंने, बलि जी ने कहा जी आप जाने तो दो कुछ हो गया तो नहीं इसको मैं मारूंगी, पहले तो मैं अपना पुत्र बनाना चाहती थी अब इसको मैं पीस दूंगी से मारूंगी, इसीलिए वही उतना होकर के आई उनको मारने के लिए, बेटा के रूप में मांगा था और अंत में जब उसका ये करतूत देखी तो उसने
लगा जैसे हमारे। तो उसने क्या किया, बलि महाराज जी को बांध दिया, ये सब पृथ्वी माफ लिया, अपने को भी माफ हुआ, तभी उसको बांध करके गिरा दिया। जैसे कौए किसी टोकरी में किसी का खाते हैं, उसी आदमी को ठुकराते हैं, ऐसे ये जन इनसे हमारी कैसे बनेगी। यहां पर कहने का तात्पर्य, उनको ज्ञान है कि ये भगवान थे, क्योंकि पूर्णमासी ने कहा विश्वास है, किंतु भगवान होने पर भी उनका नर लीला का भाव जो हमारे प्रियतम है, ये भाव टूट नहीं हुआ और उनसे संधि हम नहीं करेंगे, इसलिए ये मातृत्व। यहां पर रास में जो कृष्ण जो करोड़ों करोड़ रूप धारण किया, रूप नहीं धारण किया, यहां पर जो कोटि कोटि जो बने हैं वो बने नहीं थे, यहां पर क्षिप्रता और लाघवता है कृष्ण, क्षिप्रता और लाघवता मैंने कहा, एक ही कृष्ण राजा जी देख रही हैं यहां पर खड़े, और इतनी तेजी के साथ में रास हो रही है कि कभी यहां दिखते हैं, कभी वहां दिखते हैं, कभी वहां दिखते हैं, कभी सब इस गोपियां समझते जी हमारे पास, इतनी क्षिप्रता और लाघवता के साथ में वो रूप धारण करके, रूप धारण नहीं वहां पर पहुंच रहे हैं, अलाप चक्र से भी अधिक गति से। जैसे हमने देखा है हमारे यहां बनारस की एक नौटंकी गई थी गांव में, तो उस समय उसने 4-5 हजार रुपए लिए थे, उसमें एक नाचने वाला था, वो थाल के ऊपर में नाचता था, उसकी जो यानी खड़ा वो बड़ा सा थाल था उसके ऊपर, और सिर पर हजारों प्रदीप रख करके, हजारों ने अधिक प्रदीप रख करके एक घड़ा रखा, उसके ऊपर में वो एक घड़ा एक और बीच बीच में एक थाल और उसके ऊपर में प्रदीप रख करके, और ऐसा नाचता था कि एक भी इधर उधर नहीं गिरता, और थाल के समीप में एकदम इतनी क्षिप्रता के साथ में घूमता था अद्भुत। तो एक साधारण आदमी ऐसा नृत्य कर सकता है, तो कृष्ण कैसे नृत्य करेंगे, एक कृष्ण भी गोटि गोटि गोपियों में ऐसी क्षिप्रता के साथ लाघवता के साथ में, ये नरलीला का रूप है, इसलिए ये बात होती है, अलग रूप नहीं बनाया, द्वारका में अलग रूप बना सकते हैं, ऐसे यहां रूप नहीं बनाया, एक ही कृष्ण सब, इसलिए यहां न तो काय व्यू है, न तो कृष्ण का कोई अवतार है, न प्रकाश है, न कुछ, एक ही कृष्ण सब गोपी है और सब गोपी देखेंगे हमारे सब, इसको कहते हैं माधुर्य। ये माधुर्य वैकुंठ में नहीं है, इसलिए इस बेचारे का मन नहीं लगता था क्या करे, उन्होंने नारी पकड़ करके देखा, जैसे ये तो इतना महान चीज चाहता है, राजा अच्छा सब समझो, तब इन चीजों को समझा रहे हैं, इसलिए वहां जाने के लिए किन किन गुणों की जरूरत है इसके संबंध में आइडिया दे रहे हैं, इसलिए हम यहां पर जगत में